جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت، اور الحمد للہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اپنے شرعی مسائل کا حل قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمد للہ عز و جل دار الافتاء سے مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ کے کالز لیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلے نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا انعامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ نماز کے واجبات، یہاں واجبات سے کیا مراد ہے اور کن باتوں کو آج ہم بیان کریں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے جو ہمارے گزشتہ چند سلسلے نماز کے شرائط اور پھر اس کے بعد نماز کے فرائض کے حوالے سے ہوئے تھے، تو فرائض اور شرائط کا معنی تو یہ تھا کہ ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
شرائط کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی،
صحیح،
ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا نماز سے پہلے ہونا ضروری تھا۔ اور فرائض کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر نماز ہوگی نہیں، ان امور کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف،
صحیح۔
تو نماز کے واجبات، واجب یہ فرض سے اس کا درجہ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے
تو کوئی حرج نہ ہو،
کوئی حرج بھی لازم نہ ہو،
ٹھیک،
ایسا نہیں ہے۔ فرائض کے ترک کرنے سے نماز سیرے سے ہوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے نماز کا رکوع چھوڑ دیا اور نماز پڑھ لی، تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوئی،
صحیح۔
نماز میں ہر رکعت میں دو سجدے فرض تھے، اگر کسی نے ایک سجدہ کیا، کسی بھی ایک رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا اور یہ اپنے زوم میں نماز مکمل کر چکا ہے، لیکن اس کی نماز فرض رہ جانے کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ نماز جو فرض ادا کر رہا تھا ظہر کے یا عصر کی، کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ نماز نہیں ہوئی، اس کو پھر دوبارہ سے پڑھنا ہوگا،
ٹھیک ہے۔
اچھا، نماز کے واجبات یعنی فرض سے اس کا درجہ کم ہے، کم اس اعتبار سے کہ اگر کوئی واجب نماز میں رہ جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا جائے، چاہے بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تو اس کے رہ جانے سے ایسا نہیں ہوتا کہ نماز ہوئی نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کا جو فرض تھا، جیسے وہ اگر کی نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیا، ظہر کے فرضوں میں کوئی واجب چھوڑ دیا، تو وہ فرض تو ادا ہو گئے،
ٹھیک ہے،
لیکن نماز میں ایک ایسا نقص آ گیا، ایک ایسی کمی واقع ہو گئی ہے کہ اب اس کمی کو شریعت مطہرہ نے پورا کروانا ہے،
صحیح۔
اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ وہ واجب جو چھوٹا ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تھا، تو اس صورت میں اس نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے،
ٹھیک ہے،
تاکہ دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے پچھلی نماز میں جو کمی رہ گئی تھی، تو یہ دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جائے،
ٹھیک ہے۔
اچھا، اگر یہ واجب بھولے سے چھوٹا تھا اور ابھی ہم نماز میں ہیں، تو شریعت مطہرہ نے پھر جو واجب چھٹنے کی وجہ سے نقص آیا سہون،
صحیح،
تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کو مقرر کیا، سجدہ سہو کر لیا جائے گا تو نماز دوبارہ سے درستگی کی طرف آ گئی، اور اب نماز سے یہ فارغ ہوگا تو نماز بالکل درست طور پر ادا کہلائے گی،
ٹھیک ہے۔
تو واجب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے سے نماز میں ایک نقص آ جاتا ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر دوران نماز ترک واجب بھولے سے نہ ہوا ہو، قصدن چھوڑا ہو، تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا تاکہ وہ کمی پوری ہو۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی جو صورت بنے گی، تو سجدہ سہو کر کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر سہون کوئی واجب چھوٹا تھا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، तो अब इस सूरत में इस नमाज को दोबारा से पढ़ना वाजिब होगा। इसको कहा जाता है वाजिबुल यादा, यानी इस नमाज को दोबारा से दोहराना ये वाजिब होगा जो नमाज पढ़ी जाएगी। इस तरह पिछली जो नमाज तरके वाजिब की सूरत में हुई थी और सजदा सहव भी नहीं कर पाए तो उस कमी को दोबारा से पढ़ने से पूरा कर दिया जाता है।
ठीक है,
वाजिबात की ये अहमियत है। और अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुम अलिया की किताब उर्दू जबान में बहुत ही जबरदस्त किताब है, नमाज के अहकाम।
नमाज के अहकाम,
तो इसके अंदर अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुम अलिया ने जो नमाज के वाजिबात हैं इनको मुख्तसर मुख्तसर करके काउंटिंग करके जब जिक्र फरमाया अपने इस रिसाले में नमाज के अहकाम, इसमें अमीर अहल सुन्नत ने 30 वाजिबात को जिक्र फरमाए।
ठीक,
अच्छा ये 30 वाजिबात को हम अमल में ला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये 30 वाजिबात किस तरह याद होंगे,
यानी ये समझ रहे हो कि दोबारा से कोई नई 30 चीजें हैं जिनको याद करना पड़ेगा। तो
असल ये है जिस तरह हमें बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना, उनके बस नाम नहीं पता होते हैं। अच्छा ये वाजिब है, ये फर्ज है, काम वही कर रहे होते हैं।
ठीक,
लेकिन बस निशानदेही करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा, अच्छा अच्छा ये चीजें वाजिब है, तो इनको जहन में रखना ये एक अहम तरीन चीज है, ताकि अगर कोई वाजिब भूले से छूटे तो अब आपको क्या करना है, सजदा सहव करना है। अगर कोई वाजिब जानबूझ के छोड़ दिया, इग्नोर किया कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी ये समझते हुए उसको छोड़ दिया, तो नमाज को दोबारा से पढ़ना होगा।
ठीक,
तो इस एतबार से आज के टॉपिक पे हमने नमाज के वाजिबात को लिया है।
मदनी चैनल के नाज़रीन अगर इस पर तवज्जो कर लें कि आज हमने जो अरकान हम अदा कर रहे हैं उनके नामों से वाकफियत अभी हासिल कर लेंगे तो भी हमें अंदाजा हो जाएगा इसका कि क्या वाजिब था, और इसके छूटने पर जिस तरह से अहकाम मुफ्ती साहब ने बयान फरमाए वो हमने सुन ही लिए।
तो 30 वाजिबात हैं, उनमें से सबसे पहला वाजिब जैसे कौन है जो नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर नहीं कहता।
ठीक है,
सभी
लोग ऐसा करते हैं।
तो लफ्ज अल्लाहु अकबर कहना ये नमाज का ये वाजिब है, सबसे पहला वाजिब समझे, यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम क़याम करते हैं, क़याम के अंदर कुरान पाक पढ़ा जा रहा होता है, कुरान पाक में सूरह फातिहा से मुस्किरात का आगाज करते हैं। फर्ज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बकिया तमाम नमाजों की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, सूरत का मिलाना भी वाजिब है। अब सूरत मिला लें कोई सी भी, या यूं भी किया जा सकता है कि कुरान पाक की एक बड़ी आयत पढ़ लें जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो।
ठीक है,
या 3 छोटी आयतें पढ़ लें, मिसाल के तौर पे आयतुल कुर्सी जो है एक आयत है लेकिन तवील है, तो अगर आयतुल कुर्सी को कोई 2 हिस्सों में टुकड़े करके पढ़ता है,
ठीक,
कि आधी पढ़ ली पहली रकत में और आधी पढ़ ली बकिया रकत में दूसरी रकत में, तो भी इसका वाजिब अदा हो जाता है, क्योंकि ये इतना कुरान पढ़ लिया गया है जो 3 छोटी आयतों के बराबर है। या सूरह कौसर पढ़ ले, इन्ना आतैनाकल कौसर, ये छोटी सूरत है, तो इस तरह भी वाजिब अदा हो जाएगा। सूरह फातिहा पढ़ना ये भी वाजिब है, फर्ज की तीसरी और चौथी के अलावा, यानी पहली और दूसरी में भी पढ़ना वाजिब है, और फर्ज की तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन फर्ज के अलावा जितनी भी नमाजें हैं, चाहे वो सुन्नत मौकदा हो, सुन्नत गैर मौकदा हो, या वितर हो, तो इन तमाम नमाजों में, या सलातु तस्बीह है, 4 रकत वाले नवाफिल हैं, इन सब नमाजों में हर हर रकत के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना भी वाजिब है, और 3 छोटी आयतें वो पढ़ी जा सकती हैं सूरह फातिहा के बाद। इसी तरह 3 छोटी आयतों के बजाय एक बड़ी आयत 3 छोटी आयतों के बराबर हो मिकदार में, वो पढ़कर भी ये वाजिब अदा किया जा सकता है, और आमतौर पर ऐसा ही लोग कर रहे होते हैं, कोई नई बात नहीं है।
नहीं, मसला बस स्पेसिफाई हुआ है, कोई नई बात नहीं है, अदायगी तो हमारी इसकी पहले।
इसका तायुन करना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका दर्जा क्या है शरीयत मुतारा ने। अच्छा, फिर ये भी है, एक वाजिब ये भी है जो हम अमल में लाते हैं, कौन है जो सूरह फातिहा से पहले सूरत पढ़ता हो, पहले सूरह फातिहा ही पढ़ी जाती है फिर बाद में कोई सूरत पढ़ते हैं, तो एक वाजिब ये है कि सूरह फातिहा पहले पढ़ी जाएगी, उसके बाद में कोई और सूरत या आयात पढ़ी जाएंगी। अच्छा, इसी तरह
सूरह फातिहा पढ़ने और उसके साथ जो कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं उन दोनों में ये तरतीब का ख्याल रखना जरूरी है।
जरूरी है कि पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, बाद में कोई और सूरत पढ़ी जाए।
तो अगर ऐसा हो गया कि सूरह फातिहा के बजाय कोई और ही सूरत पहले पढ़ दी,
जी जी,
तो अब क्या तरतीब से तो हट गए, लेकिन क्योंकि सूरह फातिहा भी वाजिब थी, कोई और सूरत पहले पढ़ दी तो बाद में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं।
नहीं, अब वो जो पहले जो सूरत पढ़ना शुरू कर दी, मिसाल के तौर पे कोई दूसरी रकत में खड़ा हुआ और कुल या अय्युहल काफिरून से ही स्टार्ट ले लिया ना उसी
के,
तो ये वाजिब से तर्क हुआ कौन सा के इब्तिदा सूरह फातिहा से करनी थी।
सही,
तो वाजिब तर्क हुआ। इनको अब लाजिम होगा भूले से ऐसा होने की सूरत में इनका सजदा सब लाजिम होगा, लेकिन इस वक्त सूरह काफिरून पूरी नहीं पढ़नी, बस जितना पढ़ लिया याद आते ही पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अच्छा, पहले जो सूरत पढ़ी भले वो तीन आयतें पढ़ ली थी,
सही,
ठीक है, पूरी सूरह काफिरून पढ़ ली,
सही,
फिर याद आया कि सूरह फातिहा तो पढ़ी नहीं, तो सूरह फातिहा पहले पढ़ी जाएगी, उसके बाद फिर कोई सी भी सूरत का पढ़ना ये लाजिम रहेगा। ये नहीं होगा कि वो पहले हो गई थी तो अब दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं है, तो सूरह फातिहा पहले पढ़ी जाएगी, इसके बाद में कोई वो सूरत पढ़नी है इसका तरतीब का ख्याल रखना ये वाजिब है। इसी तरीके से अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान हम सूरह फातिहा खत्म करते हैं तो आमीन कहते हैं
जी,
इसके बाद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अगले सूरत का आगाज करते हैं। तो सूरह फातिहा और अगली सूरत या आयत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ा जाए, इसका ख्याल भी रखना ये जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जब हम किरात कर लेते हैं तो किरात करने के बाद फिर अब वाजिब ये है कि हमने सूरह फातिहा भी पढ़ ली और जो हमें सूरत या आयात पढ़नी थी किरात का वाजिब भी अदा कर लिया। अब किरात कर लेने के बाद अब खामोश खड़ा ना रहे
जी।
वाजिब यह है कि किरात के फौरन बाद अब रुकू में जाना है। इसी तरीके से ये पांच वाजिब हो गए। छठा वाजिब यह है कि एक सजदा करने के बाद बितरतीब दूसरा सजदा करना,
ठीक,
यानी दो सजदों के दरमियान कोई और अमल नहीं किया जाएगा।
सही,
एक सजदा किया अब उसके दरमियान कोई और काम मसलन खड़ा हो गया, दूसरा सजदा करने से पहले ही कोई खड़ा हो गया तो वाजिब छूट गया, इसलिए कि एक सजदा कर लेने के बाद अब वाजिब है कि अब बितरतीब दूसरा सजदा किया जाए। सब यही कर रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे शनाख्त कराना मकसूद है कि अगर किसी का ये वाजिब छूट गया किसी की वजह से, उसकी एक सूरत यह हो सकती है कि किसी आदमी ने एक रकत में दो सजदे करना फर्ज थे और उसने एक ही सजदा किया और खड़ा हो गया अगली रकत के लिए, तो वाजिब छूट गया, इसलिए कि एक सजदा करने के बाद फौरन दूसरा सजदा करना था, इन दो के दरमियान कोई और काम नहीं करता, तो बितरतीब दूसरा सजदा करना ये वाजिब है। इसी तरह एक वाजिब है ताजी।
एक सवाल ऐड करना चाहूंगा, जिसे दो सजदे कर रहा है तो दो सजदों के दरमियान बैठेगा, वक्फा लेगा थोड़ा सा, एक सजदा करेगा उठेगा, अब आपने इरशाद फरमाया कोई और अमल इन दोनों के दरमियान नहीं कर सकता, तो क्या दोनों सजदों के दरमियान बैठकर कोई तस्बीहात वगैरह भी नहीं पढ़ सकता?
ये जो बैठना होता है ना दो सजदों के दरमियान, इसको कहते हैं जलसा,
ठीक है,
इसको जलसा कहा जाता है। तो ये इसी का मैं जिक्र करना चाह रहा था, सातवां वाजिब है तादील अरकान
जी,
यानी तादील अरकान क्या है कि रुकू और सुजूद कौमा और जलसा में कम अज कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना,
सही,
तो ये ठहरना वाजिब, जैसे एक सजदा कर लिया, अब एक सजदा करने के बाद जब बैठते हैं तो इत्मीनान से बैठना है, हमारे जिस्म का जोड़ आजा अपनी हालत पर आ जाए और कोई जल्दबाजी ना हो, जिस्म की जो हरकत सजदे से उठने वक्त की थी वो मौकूफ हो जाए।
सही,
एक मरतबा सुबहान अल्लाह जितनी देर में कह सकते हैं इतनी देर तक सुकून में आना, इत्मीनान में आना, ये वाजिब है, इसको कहते हैं तादील अरकान। तो ये तो वाजिब है, अलबत्ता दो सजदों के दरमियान एक दुआ है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मरहमनी, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, तो अरबी जबान में ये दुआ अल्लाहुम्मरहमनी या अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी। तो जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है, वो तन्हा नमाज पढ़ने वाला अपनी नमाज में जलसा यानी सजदे करने के बाद जो बैठते हैं दो सजदों के दरमियान, इसमें ये अल्लाहुम्मा रब्बी गफिरली वरहमनी कह सकता है, मुस्तहब अमल है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। वो जो वाजिब है ना कि एक सजदा करने के बाद बितरतीब दूसरा सजदा करना, उसका मतलब ये है कि एक सजदा करने के बाद अब ये खड़ा ना हो जाए,
सही,
कि अब उसके बाद फिर बैठेगा फिर दोबारा सजदा करे, तो ये इसका खड़े होने से ये वाजिब छूट गया। तो बितरतीब सजदा करना है, इसका मतलब यही है कि एक सजदा करने के बाद ये जलसा करेगा, जलसा करने के बाद फिर ये दूसरे सजदे में जाएगा। तो ये तादील अरकान ये भी वाजिब है, और एक हमारी बड़ी तादाद है नमाज पढ़ने वालों की जो बाकायदा हम कहें कि साल हा साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक गलती कर जाते हैं
जी,
वो गलती या तो वो कोमा छोड़ देते हैं या वो जलसा छोड़ देते हैं। अब कोमा क्या है? कोमा इसको कहते हैं कि रुकू करने के बाद जब आदमी खड़ा होता है दोनों हाथ ढीले छोड़कर, तो ये जो पोजीशन होती है इसको कहते हैं कोमा। ये मोटे काफ के साथ है, ये डंडी वाले काफ के साथ कोमा नहीं है, वो तो एक मर्ज होता है। तो कोमा ठीक है, जैसे कौम लिखते हैं ना मुसलमान कौम, तो उस मीम के आगे हा लगा दें तो ये कोमा बन जाता है। तो ये कोमा का मतलब होता है मुख्तसर खड़ा होना। लेकिन ये मुख्तसर खड़ा होना इतना है कि आप अगर खड़े होंगे तो इत्मीनान के साथ हमारे पूरे आजा में अब हरकत ना रहे, इत्मीनान सुकून के साथ अब हम खड़े हो जाएं। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मकदार ये कोमा भी वाजिब है।
ठीक है,
लेकिन आप देखते हैं एक तादाद को कि ये रुकू से उठते हैं, अभी कमर टेढ़ी होती है, कमर सीधी भी नहीं हुई
जी,
और फौरन सजदे में चलेगा। तो ये हजरात नमाज का ये वाजिब जो कोमा है उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी तरह एक सजदा करेंगे, सजदा करने के बाद उठेंगे, कमर भी सीधी नहीं करेंगे, फौरन दूसरे सजदे में चले जाएंगे, तो इनका जलसा छूट जाता है।
यानी कोमा और जलसा इन दोनों के वाजिबात तर्क,
ये वाजिबात लोग तर्क कर रहे होते हैं, और ये तर्क हम ये नहीं कहेंगे कि ये भूले से छोड़ रहे हैं,
वो
सहावन
क्या हो रहा है,
ये इनकी जल्दबाजी है। नमाज के मसाइल ना सीखने की वजह से है, नमाज के मसाइल ना सीखने का नतीजा क्या निकला है कि कौन सी चीज वाजिब थी, उसका दर्जा क्या था, वाजिब के छूट जाने से नमाज पे क्या असर पड़ता है। तो इस तरह करने से क्या हुआ, नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए मुलाहिजा फरमाया, बड़ी जल्दबाजी से नमाज पढ़ रहा था, और ये अहादीस कई किताबों में मौजूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुम फसल्ली फैनका लम तुसल्ली, खड़े हो, यानी वो हुजूर की बारगाह में आके बैठे नमाज पढ़ने के बाद, ताकि हुजूर से खैर बरकत हुजूर की बारगाह में बैठने से हासिल हो। आपने फरमाया कुम फसल्ली फैनका लम तुसल्ली, जाइए और दोबारा नमाज पढ़े, जो आपने नमाज पढ़ी वो नहीं हुई,
नहीं हुई,
यानी वो कमाल दर्जे को नहीं पहुंचे। अब दोबारा नमाज पढ़ने के बाद बैठे तो हुजूर ने फरमाया जाए दोबारा नमाज पढ़े। फिर तीसरी मरतबा जब ऐसा फरमाने लगे ना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे नमाज का तरीका बताइए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें जबानी नमाज का तरीका इरशाद फरमाया। उस तरीके कार में ये अल्फाज अहादीस करीमा में मौजूद हैं कि जब तुम रुकू करो तो इस तरह रुकू करो कि इत्मीनान तुम्हें नसीब हो।
ठीक,
फिर जब रुकू से उठो तो इस अंदाज में खड़े हो कि तुम इत्मीनान से खड़े हो।
सही,
फिर उसके बाद सजदा करो इत्मीनान से सजदा करो।
वाह,
फिर सजदे के बाद जब बैठते हैं जिसको हम जलसा कहते हैं, तो इसमें जब बैठे तो फरमाया इस अंदाज में बैठो कि तुम इत्मीनान से बैठे हुए हो। फिर अगले सजदे का जिक्र फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हदीस मुबारक में हत्ता तत्मइन्ना के अल्फाज हैं, यहाँ तक के तुम सुकून महसूस कर रहे हो, यहाँ तक के तुम्हें इत्मीनान हासिल हो रहा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दो बातों की तरफ, यानी इन चीजों की तरफ तवज्जो बिलखुसूस इरशाद फरमाई कि जिससे नमाज में नक्स आ रहा था। तो एक बड़ी तादाद हमारे मुसलमानों की है कि जो रुकू करते हैं और रुकू करने के फौरन बाद सीधे खड़े भी नहीं हो पाते, बस फौरन सजदे में जाने की पड़ी होती है। एक सजदा करने के बाद सही तरह बैठते नहीं है, इत्मीनान से दूसरे सजदे में जाने की पड़ी होती है। तो हम अपने यहाँ घर से निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, यानी मुशक्कतें बर्दाश्त करते हुए आए नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज इस अंदाज में पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद ना हो। ऐसी नमाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ना हो, फिर इस अंदाज की नमाज के वो फवायद हासिल नहीं होंगे कि जो नमाज के जरिए मुसलमानों को हासिल करने हैं।
नमाज से तो हम इत्मीनान हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन खुद नमाज इत्मीनान से नहीं पढ़ रहे होता।
ही बात,
तो इसमें देखना चाहिए कि बिल्कुल इत्मीनान रहे, सुकून से नमाज पढ़े। वाकई मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारी तवज्जो दिलाई कि जब हम घर से निकल रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, इतने सारे काम करते हुए फिर इसकी तरफ आ रहे हैं, जो हमारा मकसूद असली है कि वुजू किस लिए किया था, क्योंकि नमाज अदा करेंगे, वो भी सब इत्मीनान से कर लिया। कुछ अफराद तो वुजू करने में भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम बात स्पेसिफिकली नमाज की कर रहे हैं, तो हम नमाज में भी देख लें कि इतने सारे काम हम नमाज के लिए करते हैं और इतना वक्त निकाल रहे होते हैं, لیکن یہ چند ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اس میں ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور رکوع سے سیدھے نہیں کھڑے ہو رہے ہوتے، سجدے سے سیدھے بیٹھ نہیں رہے ہوتے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں نقصان کتنا ہوتا ہے کہ ہمارا واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں کمی بات.
خالد بھائی، بعض ایسی ویڈیوز یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایسی ایک تراوی ہو رہی ہے، اس تراوی میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں نماز، اور وہ اس انداز کی تراوی ہو رہی ہے کہ 20 رکعتیں جو ہے نا، شاید کوئی مقابلہ چل رہا ہے کہ کون کتنی جلدی پڑھاتا ہے، ایسا چل رہا ہے کہ بس تھک تھک رکو میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، رکو سے اٹھ رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں، مطلب نہ قومے کا پتا نہ جلسے کا پتا، اتنی اسپیڈ میں کام ہو رہا ہے گویا جیسے کوئی مشین چل رہی ہو نا. اب قرآت بھی ایسی ہو رہی ہے کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح کی افسوس یہ ہے کہ اس طرح کی نمازیں پڑھنے والے پڑھانے والے وہ اپنا پتہ نہیں کوئی ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ثواب لینا ہے اللہ سے، تو نماز بھی ایسی پڑھیں جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ روایات میں جو آتا ہے نا کہ بعض لوگوں کی نماز سر سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز ان کے منہ پر، جیسے پرانے کپڑے میں پرانے کپڑے پھینک دیے جاتے ہیں میلے کچیلی جگہ پہ، لوگ اطمینان اہتمام سے نہیں رکھتے پھینک دیتے، تو اس طرح نماز کو میلے کپڑوں میں جیسے لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو دیکھیں کام اگر کوئی، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جس طرح کوئی ملازم ہو اور اپنے سیٹ کی طرف سے ملنے والے اس کو آرڈرز اس کو فالو نہ کرے، اپنی مرضی کے کام کرتا رہے، اور جو کام کر کے لایا وہ ایسا لایا کہ وقت بھی ضائع ہوا میٹیریل بھی ضائع ہوا اور مالک کو پسند بھی نہ آئے،
جی
تو اب اس ملازم کی حیثیت ایک مالک کے سامنے کیا ہوگی، اور وہ کس انداز میں اپنی پروڈکٹ اپنے مالک کے سامنے سیٹ کے سامنے پیش کرے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہے تاکہ ہمارا رب ہمارا مولا عز و جل ہم سے راضی ہو.
ٹھیک، سب کچھ سوالات کی طرف ہم چاہیں گے آگے بڑھیں، میسیجز شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اکثر لوگ تمام نمازوں کے نفل نہیں پڑھتے، شریعت کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جیسے ظہر کی نماز کے بعد دو نفل ہیں، مغرب کے بعد بھی ہیں، عشاء کے بعد بھی ہیں، تو نوافل کا پڑھنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کو چھوڑنا یوں سمجھیں کہ ثواب سے ثواب کا انبار جمع نہ کرنے جیسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑے تو اس پہ کوئی لان تان کیا جائے، ملامت کی جائے، ہاں پیار اور محبت کے ساتھ احسن طریقے سے ترغیب دلائی جائے، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو مدنی انعامات کی صورت میں جو نیک بننے کے نسخے عطا فرمائے ہیں، تو اس کے اندر نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، ان میں یہ ظہر اور عصر جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے ساتھ جو سنت موقعہ غیر موقعہ نوافل ہیں ان کے ساتھ ساتھ نماز اوابین، اشراق و چاشت اور صلاۃ التوبہ، تہجد کی نماز، ان سب چیزوں کی بھی امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے، تو یہ سب پڑھنی چاہیے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے کہ نفل کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کیا جائے گا تو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ سزا نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. سر ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی ایک طرف سلام پھیرے اور دوسری طرف سلام نہ پھیرے تو اس کے بارے میں کیا ہو؟
ایک طرف سلام پھیرنا اس سے نماز سے تو آدمی نکل جائے گا، یعنی نماز کا فرض ادا ہو گیا کہ وہ ایک سلام سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن دو سلام پھیرنا یہ واجب ہے.
ٹھیک،
اب اس میں جو گردن کا پھیرنا ہے یہ سنت ہے،
صحیح،
لیکن لفظ سلام کا کہنا السلام علیکم،
ٹھیک،
لفظ سلام کا کہنا یہ واجب ہے.
ٹھیک،
ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھانا یہ سنت ہے، تو اگر کسی نے ایک طرف سلام پھیرا ہے تو اس ایک ہی سلام پھیرا ہے بس،
صحیح،
اور اس کے بعد وہ باتوں میں لگ گیا تو اس صورت میں نماز کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سلام کے دو الفاظ کہنا واجب تھے اور اس نے یہ چھوڑ دیے تو اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنا یہ واجب الادا ہوگا.
تو بھائی بالکل احتیاط کریں، ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری ہی نماز پڑھ لی تھی صرف ایک سلام ہی، ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے. اطمینان سے جب تک نماز میں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ نماز میں ہی رہیں. فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے कि अगर फर्ज या सुन्नत नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में चला जाए फिर याद आए या रुकू के बाद याद आए तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा, जवाब इनायत फरमा दीजिए।
इनका सवाल भी एक तर्क वाजिब के अतबार से हुआ ना, तो वाजिब क्या था कि सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलानी थी।
सही।
अब अगर कोई रुकू में चला गया तो रुकू में जाने के बाद या रुकू की हालत में या रुकू से खड़े होने के बाद अगर याद आता है कि मैंने सूरत नहीं पढ़ी तो हुक्म यही है कि अब ये सूरत पढ़ लें, यानी खड़े होकर अगर रुकू में है तो रुकू से वापसी क्याम की हालत में आ जाए और जो सूरत पढ़नी थी जो पढ़ना चाहें ये पढ़ सकते हैं, इसके बाद दोबारा रुकू करें और नमाज को आगे कंटिन्यू करें जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म है, आखिर में सजदा सहव कर लें। इस तरह सजदा सहव कर लेने से जो नमाज का एक वाजिब भूले से छूट गया था कि सूरत पढ़ने के बाद फिर रुकू में जाना था, तो ये वाजिब छूटने की वजह से जो कमी आई सजदा सहव कर लेने से वो नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
ठीक है, ये अजीज अत्तारी हैं पंजाब से और इनका कहना ये है कि जो मांगने वाले हैं क्या उनको भीख देनी चाहिए। अब स्पेसिफिक नहीं किया गया है सवाल कि किस तरह का मांगने वाला है, कौन है, लेकिन बहरहाल
इसमें मांगने वालों की दो सूरतें हैं। एक तो वाकईतन जो मजबूर है महज हो चुका हो और ना कमाने पे कुदरत पाता हो तो ऐसी सूरत में उसकी मदद करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो कमाने पर कुदरत रखते हैं लेकिन आराम तलबी की खातिर वो कमाते नहीं है और हडारामी पे डटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो पेशावर, खुलासा ये कि पेशावर जो फकीर होते हैं ना इनको देना जायज नहीं है। ऐसे भी लोग हैं खालिद भाई के एक आदमी मेहनत मुशक्कत करके बमुश्किल 600-800 रुपए या ज्यादा से ज्यादा हिम्मत करके 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा लेता है वो, लेकिन ये जो पेशावर फकीर हैं इनके बारे में बास के बारे में पता चला कि 4-4 हजार रुपए एक दिन में ये आराम से कमा रहे होते हैं। खाना भी होटलों पे फ्री में इनको कोई ना कोई दे ही देता है, ये खा लेते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ खाने तकसीम हो रहे होते हैं वहां पे खा लिया, लेकिन 4-4, 5-5 हजार रुपए डेली के ये कमा रहे होते हैं। कई बसों में चढ़ जाएंगे कभी नहीं, मतलब हर बस में भी अगर कोई चढ़ के 20 रुपए भी अगर ले लेता है
जी,
एक आदमी कितनी बसों में चढ़ता होगा कितने रुपए कमा लेता होगा। तो ऐसे लोगों को जो पेशावर हैं और ये आम तौर पे पता चल जाता है इनके अंदाज से नपे तुले अल्फाज से जो मांग रहा हो
जी,
रटे रटाए अल्फाजों से जो मांग रहा हो, बड़ी तर्जें लगा लगा के जो मांग रहा हो
जी,
तो इसका मतलब है कि इसने अपनी आदत ऐसी बना ली है। तो इसमें जांच पड़ताल जरूरी है, इसमें हम अगर कोई तलब करने वाला है तो उसकी जाहिरी पोजीशन को देखकर हम फैसला कर सकते हैं कि अगर ये पेशावर होगा तो आपको बारहा या मांगता हुआ नजर आएगा, और अगर पहली दफा ही दस्ते सवाल इसने दराज किया है और आपको इसकी जाहिरी कंडीशन ऐसी लगती है कि ये कमाने पर भी कुदरत नहीं रखता, बहुत ज़ईफुल उम्र हो चुका है, तो फिर इसकी मदद बिल्कुल करनी चाहिए।
ठीक है जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें एक मरतबा देखने में समझ में आ रही होती हैं, नजर पड़ती है तो दिल एक अलग सी गवाही दे रहा होता है कि इसके साथ इस तरह का मसला होगा नहीं होगा, तो इन सारी सूरतों को भी सामने रखना चाहिए। हम जब अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ हो कि जहाँ से हमें फायदा ज्यादा मिल रहा हो, जहाँ पर देने का हमें सवाब भी हो, तो पेशावर अफराद जो है वो पहचान लिए जाते हैं।
ऐसा भी है कि आप किसी को खाना भी देंगे ना
जी,
वो खाना लेके भी चले ले लेगा, आप चले आएंगे वापसी लाके होटल पे वापसी भी कर देते हैं। आटा दाल चीनी आपने किसी को दिला दी तो वो आटा दाल चीनी लेकर दोबारा दुकानदार के पास आके वापसी लेके पैसे ले लेता है, तो ये भी लोग कर रहे हैं। अब यूं समझें कि इसमें जो असल हकदार है ना वो असल हकदार बेचारे मारे जाते हैं और इस तरह पेशावर अफराद वो आपके पैसे ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यूं समझें कि नजर पैदा करनी होगी कि हम अपना माल जब दे रहे हैं तो क्यों ना हकदार तक पहुंचे। तो ऐसी कोई सूरत बनानी चाहिए कि इस सूरत में आजकल जो है ना वो धोखा दही ये बहुत ज्यादा आम है। कितना अगर कोई मुस्तहिक भी है ना, कोई मांगने वाला है और उसको हाजत भी है तो वो अपनी हाजत की मकदार ही सवाल कर सकता है, उससे ज्यादा भी मुतालबा नहीं कर सकता।
ठीक,
तो अब ये जो मांगने का सिलसिला है ना, इसकी थोड़ी रोकथाम होनी चाहिए, और जो वाकियातन मजबूर हैं, सफेद पोश हैं, तो अपने रिश्तेदारों में, अपने गली मोहल्लों में ऐसों को थोड़ा तलाश करें और इस अंदाज में उनको पेश कर दें कि उनकी जो सफेद पोशी है वो भी बरकरार रहे। ये ना हो कि देने के बाद अगले दोस्तों में सुना यार इसके घर में बेचारी आजमाइश में था, मैं इसको आटा दाल चीनी का राशन का सिलसिला मैं करता हूँ। तो बताकर अपनी एहसान जतलाकर अपनी नेकियां जाया ना करें। तो जो सफेद पोश है उनके सफेद पोशी बिल्कुल बरकरार रखें, इस अंदाज में दें कि उनको पता ना चले। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में आता है ना कि आप रहमतुल्लाह तआला अलैह लोगों को इस अंदाज में दिया करते थे कि गरीबों को भी नहीं पता चलता था कि हमारे घरों के पास राशन रख के जाने वाला कौन है।
क्या बात।
जब आपका इंतकाल हुआ तो राशन का सिलसिला मौकूफ हुआ, अब वो सारे गरीब गुरबा जो थे वो सामने आए कि वो कौन था जो राशन देता था और अब आना क्यों बंद हो गया। तो लोगों ने गौर किया तो पता चला ये कुछ दिनों से राशन जो बंद हुआ ये कुछ दिनों का, जब अंदाजा लगाया तो वो दिन इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल हो चुका था, तो उस वक्त से राशन आना बंद हो गया था। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये काम उन्हीं का था कि छुप कर वो ये नेकी करते थे, जिनको दे रहे हैं उन पर भी अपने आप को जाहिर नहीं किया करते। तो हमें इस अंदाज में गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे अगर कोई गरीब आदमी है और उसका एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसका कोई अकाउंट है बैंक अकाउंट, तो उसके अकाउंट में नंबर किसी तरीके से अगर हासिल हो जाए तो उसके अकाउंट में अपनी रकम भेज दें, यूं भी एक अंदाज है। तो इस तरह भी आप किसी की मदद कर सकते हैं।
अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह करीम जज्बा अता फरमाए लोगों की मदद करने का, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। हम सब इसी तनाजुर में एक सवाल ये भी आया है माहौल के तनाजुर में, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या मास्क लगाकर अगर नमाज अदा की जाएगी तो नमाज हो जाएगी?
हदीस नबविया में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन उमूर से मना फरमाया है नमाज की हालत में, तो उनमें एक अमल ये भी है कि आदमी अपने चेहरे को यानी अपने मुंह को और नाक भी इसमें शामिल है, तो इसको ना छू पाए। तो नमाज के अलावा अगर एहतियाती तदबीर करते हुए कोई मास्क लगाता है, अच्छी एक एहतियात और परहेज की एक सूरत है, और हालिया जो वायरस से बचाव की सूरत में एक तदबीर हिफाजती एक मास्क की भी बयान की गई है, तो मास्क लगाएं, एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार की जाए। लेकिन जब मरहला नमाज का आ जाए, यूँ समझे कि आप नमाज के लिए मस्जिद आ गए, अब जब मरहला नमाज पढ़ने का आ जाए, या आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, जमात आप पर शरीयत एतबार से वाजिब ना हो, तो आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, अलावा नमाज आप मास्क लगाए हुए हैं, जब बाहर जा रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जब मरहला नमाज पढ़ने का आएगा, चाहे घर में नमाज पढ़ने की सूरत बने, शरण जमात जिस पर वाजिब नहीं है तो वो घर में नमाज पढ़ रहा है, और जिन पे वाजिब है तो उनको मस्जिद में हाजिरी देनी है, तो जहाँ जमात वाजिबा हो रही है, तो अब जब नमाज का मरहला आएगा ना, तो उस वक्त मास्क को अपनी जेब में रख लें, नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर आप मास्क लगा लें। तो नमाज की हालत में मास्क लगाना ये चूंकि नाक और मुंह को छुपा देता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में इस अमल से मना फरमाया है। बाकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है,
ठीक है,
लेकिन नमाज का जो एक खास मसला है ना, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है।
यानी इबादत उनके अहकाम के मुताबिक अदा की जाए और एहतियात जो है वो अपनी जगह पर मलूज़ खातिर रखी जाए। मतलब सवाल ये आया है कि नमाज के दौरान अगर दांत से खून आ जाए तो क्या करना चाहिए?
दांत से आने वाला खून अगर इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से वो सुर्खी थूक पर गालिब आ चुकी है, तो उससे तो वजू ही टूट जाएगा, वजू टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी।
सही।
तो इस सूरत में तो फिर है कि वजू दोबारा करके अच्छे अंदाज में, के मुंह से खून ब्लड आना बंद हो जाए, फिर वजू करके फिर नमाज को दोबारा से पढ़ना होगा।
ठीक है जी, कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी, कॉल दीजिएगा।
मैं बखर से बोल रहा हूँ सुलेमान, मेरा सवाल ये है कि भाई मैं तकरीबन मेरा एक टांग का मसला है, भाई बाहे के बंदा ने मार कर सकता है या किसी कुर्सी पे या किसी जगह?
जी, इनकी अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाए, इनके पाँव का कोई तकलीफ आर्जा ऐसा है कि जिसकी वजह से ये खड़े होकर अगर नमाज नहीं पढ़ पा रहे,
ठीक,
या سجدہ کرنے پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہے کہ رکوع سجود میں آنا جانا اٹھنا یہ ان کے لیے اگر ناقابل برداشت ہے تو ایسی صورت میں یہ کرسی پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور زمین پر اگر بیٹھنا ممکن ہے تو آلتی پالتی جس کو کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا اس طرح بیٹھ کے پڑھنا بھی ممکن ہے تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا دو زانو بیٹھنا جیسے اتحیات میں عموماً بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھنا ممکن ہو تو یوں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں جو صورت ان کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کمفرٹیبل ہو وہ صورت اختیار کر سکتے ہیں البتہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں اگر اتنا جھکے ہیں ٹھیک ہے تو نارمل اطمینان سے قومہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر سجدے کی طرف اشارہ کریں گے وہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے تو جب اشارے سے سجدہ ہو رہا ہو تو سجدوں کا اشارہ رکوع کے جھکنے کے مقابلے میں زیادہ نیچے ہو یہ ان کو احتیاط کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی نصیب فرمائے اور جلد از جلد درست طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی انہیں بھی طاقت و توفیق عطا فرمائے
آمین آمین سوال یہ آیا ہے میسج میں کہ کسی ایسی بک کا نام بتا دیں جس میں نماز کے فرض اور واجب سب ہوں مزید لکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو کیا سجدہ صاف کرنا کافی ہے
سب سے پہلے تو دوسرے سوال کا جواب کہ نماز میں کوئی فرض رہ جاتا ہے تو فرض رہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی وہ نماز ہوئی نہیں
ٹھیک
اس نماز کو تو سرے سے پڑھنا ہوگا سجدہ سہو صرف واجب ترک ہونے کی صورت میں جو نقص آتا ہے اس کو دور کرتا ہے اور واجب بھی بھولے سے چھوٹا ہو
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے قصدن واجب چھوڑیں گے تو سجدہ سہو اس کے لیے بھی کفایت نہیں کرتا کیونکہ اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے سجدہ سہو ٹھیک ہے بھولے سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے واجب اس کے ازالے کے لیے اس کی کمی کو پوری کرنے کے لیے سجدہ سہو ہوگا فرض کی کمی سجدہ سہو سے پوری نہیں ہو سکتی باقی رہا کہ نماز کے فرائض نماز کے واجبات تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز کتاب نماز کے احکام اس کے اندر 12 رسائل ہیں ان رسائل میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ تو اس نماز کے طریقے رسالے کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے شرائط کا بھی ذکر کیا ہے فرائض کا بھی ذکر کیا ہے واجبات کا بھی ذکر فرمایا ہے نماز کی سنتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے نماز کے مستحبات کا بھی ذکر فرمایا ہے یعنی کرنے والے کاموں کو بھی ذکر کیا ہے اور نماز میں نہ کرنے والے جو کام ہیں نا مکروہات یعنی جو ناپسندیدہ امور ہیں تو ان کو بھی ذکر فرمایا ہے مکروہ تحریمی کو مکروہ تنزیہی کو اسی طرح ان امور کو کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے مفسدات ان کو بھی ذکر فرمایا تو الحمدللہ یہ کتاب بہت ہی یوں سمجھیں کہ نماز کے ٹاپک پر ایک یوں کہا جا سکتا ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک کوزے میں سمندر بند کرنا جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو کافی بڑی کتب کو پڑھنا پڑے گا تو ہنٹ اس میں گویا دے دیے گئے ہیں ہاں اس کی تفصیلات اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو پھر بہار شریعت ہے بہار شریعت کا تیسرا حصہ نماز کے ان بنیادی مسائل پر مشتمل ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے
جو سوال یہ ہے کہ داڑھ میں فلنگ کروائی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا
دانت میں فلنگ کروانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو خلا کبھی کچھ نہ کچھ دانت کا کچھ حصہ جھڑ جاتا ہے تو اس جگہ کچھ نہ کچھ فلنگ کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ مزید داڑھ خراب نہ ہو تو وہ ایسی چیز لگتی ہے کہ جو پھر دوبارہ بآسانی نکلتی نہیں ہے اور نکالیں گے تو تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی تو اس کو غسل کی حالت میں جو فرض ہوگا نا جو کلی کرنا فرض ہے تو اس لگی ہوئی چیز پر جو دانتوں میں بھری گئی تھی اس کے اوپر سے ہی پانی اگر بہ جاتا ہے تو غسل کا فرض ادا ہو جائے گا اس کو چھڑانیں گے چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھڑائیں گے تو اور تکلیف آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا
ورنہ پھر ہر غسل کے بعد نئی فلنگ بھی کروانی پڑے گی تو اس کو دیکھ لیں کہ جو مسئلہ بیان ہو گیا وہ کافی ہے یہاں پر بھی پانی گزر جائے گا تو غسل آپ کا ہو جائے گا ایک آخری کال لے لیتے
سوال یہ کرنا تھا کہ جب تکبیر ہوتی ہے اور اپنے صفے باندھ لیتے ہیں تو اس صورت میں جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی شخص جب تکبیر پوری ہونے سے پہلے اگر وہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا تکبیر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو نیت کرنی چاہیے گی
سوال میں تھوڑی مسنگ بھی لگ رہی ہے تھوڑی سی نا تو تکبیر سے ان کی مراد میرے خیال میں جو میں ان کے سوال سے سمجھ پا رہا ہوں یہ اقامت لے رہے ہوں گے نا
جی
नमाज
भी ऐसा लग रहा
तो तकबीर हो रही है तो कोई नियत कर ले, तो इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि ये इकामत जो नमाज से पहले अल्लाह अकबर जल्दी जल्दी कलिमात अदा किए जाते हैं वो इकामत होती है, तो इकामत के वक्त भी नियत नमाज की जा सकती है।
सही,
ठीक है। तो जब साफी इसी दौरान जब हय्या अलस्सलाह पे खड़े होते हैं तो इस मौके पे खड़े हों, सफ की दुरुस्तगी भी इस दौरान हो जाती है और इकामत मुकम्मल होने से पहले भी आप नमाज की नियत कर सकते हैं। जब नमाज के इब्तिदा इमाम साहब कहेंगे ना अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करेंगे, उससे पहले अगर किसी ने शुरू कर दी,
ठीक है,
और उसकी नियत ये कि पीछे इस इमाम के तो और आगे निकल गया इमाम से, तो उसकी नमाज नहीं होगी।
ठीक है जी।
तो अगर वो अपनी मुनफरिद शुरू करता है तो एक अलग बात है कि सफ में खड़े होकर मुनफरिद नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है।
ठीक है।
तो ऐसे मौके पे जब फर्ज जमात कायम हो तो जब तक इमाम साहब तकबीर तहरीमा ना कहें उस वक्त तक कोई नमाज को अपने तौर पे शुरू नहीं कर सकता। हाँ, इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कह ली अल्लाहु अकबर तो अब मुक्तदी नमाज को शुरू करेंगे। अब इनके सवाल में कुछ ऐसा लग रहा था कि तकबीर के दौरान ही कोई अगर नमाज शुरू कर दे तो नमाज का क्या हाल है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की।
ठीक है, यानी अगर इमाम साहब की जो तकबीर तहरीमा है उससे पहले नमाज शुरू करें, चाहे वो मुअज्जिन साहब तकबीर कह रहे थे या कोई और कह रहे थे, उसके दौरान अगर नियत करके हाथ बांध लिए तो फिर आपकी नमाज शुरू नहीं होगी, इमाम के साथ आप नमाज में दाखिल नहीं हो पाएंगे। इमाम के साथ नमाज में किस तरह दाखिल होना है कि जब इमाम साहब अपनी तकबीर तहरीमा मुकम्मल कह ले, अल्लाह अकबर मुकम्मल कह ले, उसके बाद फिर ये
अल्लाह अकबर मुकम्मल कहना जरूरी नहीं है। जैसे इमाम साहब ने अल्लाह कहना शुरू किया, हम भी इस टाइम अल्लाह कहना शुरू कर दें, उनके अकबर कहने से पहले अकबर ना कहें
जी,
उनके अकबर कहने के बाद अगर हमारी तकबीर खत्म होती है तो नमाज में हम शामिल हो गए। ना इमाम से पहले अल्लाह का लफ्ज कहना है, ना अकबर इमाम के लफ्ज अकबर कहने से पहले कहना है, इसलिए ख्याल रखना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये एक पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि बाज इमाम साहिबान जो ना वो तकबीर तहरीमा बहुत दराज खींच के कह रहे होते हैं अल्लाह अकबर,
कितनी देर में मुक्तदी फारिग हो चुके होते
हैं, अल्लाह अकबर कहता है।
ठीक।
तो इमाम हजरात अगर किसी की ऐसी आदत है तो उनको अपनी आदत चेंज करना जरूरी है कि इनके इस आदत की वजह से बहुत सारे नमाजियों की नमाज शुरू ही नहीं होती, वो समझते हैं कि नमाज हो गई।
अल्लाह करीम रहमत फरमाए, हम सबको नमाज और दीगर अरकान इबादत सीख कर समझ कर अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन बिजाहे नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जी।